एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
तेरा जीवन मेरा तेरा जीवन मेरा है, प्यार का तू ही सोता है यीशु, प्यार तुझी से होता है क्रूस तेरा।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूं। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को, हमारे हृदयों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। विशेषकर मेरे श्रोताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके संग उन्हें तेरे आत्मा के द्वारा तेरे वचनों को समझने और तेरे राह में चलने के लिए मदद कर। मेरे संग हो पिता, तेरा आत्मा का सामर्थ दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ द्वारा बदला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है परमेश्वर का मेमना। आइए आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 29 से पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, अगले दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जब आदम और हवा के विद्रोह का सामना करना पड़ा तो परमेश्वर ने मेल मिलाप का एक ऐसा माध्यम प्रदान किया जो प्रत्येक पापी के लिए उसके प्रेम को प्रमाणित करता है, भले ही वह पाप से घृणा करता हो। यीशु एक पाप रहित मेमने के रूप में धरती पर आया ताकि पापी दुनिया का दोष अपने ऊपर ले ले। वह यह जानते हुए आया कि वह मरेगा, लेकिन यह भी जानता था कि हम जीवित रहेंगे। आज स्वर्ग हमारा है क्योंकि यीशु स्वर्ग छोड़ने को तैयार था। मैं परमेश्वर का बच्चा हूं क्योंकि यीशु मनुष्य का पुत्र बन गया। स्वर्ग में शैतान ने परमेश्वर के दरबार में मसीह की स्थिति के कारण उसे घृणा की थी। जब वह स्वयं सिंहासन से उतार दिया गया तो उसने उससे और भी अधिक घृणा की। उसने उसे घृणा की जिसने पापियों की एक जाति को छुड़ाने का वचन दिया था। फिर भी उस दुनिया में जहां शैतान ने प्रभुत्व का दावा किया था, परमेश्वर ने अपने पुत्र को आने दिया, एक असहाय शिशु के रूप में मानवता की कमजोरी के अधीन। उसने उसे हर मानव आत्मा के साथ जीवन के जोखिम का सामना करने की अनुमति दी। मानवता के हर बच्चे की तरह लड़ाई लड़ने के लिए असफलता और अनंत नुकसान के जोखिम पर लंदन के एग्रीकल्चरल हॉल में ध्वनिकी का परीक्षण करने के लिए चार्ल्स स्पर्जन ने खाली सभागार में चिल्लाया, देखो परमेश्वर का मेमना जो दुनिया के पाप को उठा लेता है, जो दुनिया के पाप को दूर करता है। छत पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने सुना, परमेश्वर के सामने घुटने टेके और फिर वह उस समय उद्धार पाया। क्या आज आप परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और नए सिरे से उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे? परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके संग रहे जब आप इन बातों को सुनते हैं और उन पर विचार करते हैं, और जो सलाह प्रभु यीशु मसीह से मिलती है उसे ग्रहण करते हैं। यूहन्ना 1:29 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने इस जगत में अपना पुत्र को एक मेमना स्वरूप भेजा कि वह लोगों के पाप को उठा ले जाए, लोगों को पाप से बचाए। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 4 अध्याय में एक ऐसे व्यक्ति का मामला बताया गया है जिसने अज्ञानता के कारण प्रभु की उन आज्ञाओं के विरुद्ध पाप किया था जो नहीं करनी चाहिए थी। हम पद 2 में पाते हैं, पापियों की 4 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, पुजारी, मंडली, शासक और आम आदमी। जिन लोगों को कानून का अधिक ज्ञान था उन्हें अधिक महंगा बलिदान लाने की आवश्यकता थी, लेकिन गरीब व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा गया। एक मेमना एक बकरी से भी सस्ता था और इस कारण से यह उम्मीद की जाती थी कि एक गरीब आदमी एक मेमना लाएगा, इसलिए मेमने को गरीब आदमी की भेंट माना जाता था। यह महत्वपूर्ण है कि मसीह को बार बार परमेश्वर के मेमने के रूप में बाइबल में कहा गया है। वह गरीब आदमी का बलिदान है। एक मेमना भी एक हिब्रू के मन में फसह के लिए बलि किए जाने वाले जानवर के रूप में महत्वपूर्ण था। इब्री लोगों के लिए मेमना का बलिदान बहुत महत्वपूर्ण था। वे याद करते थे कैसे परमेश्वर ने उन्हें इस मिस्र के गुलामी से बचाया था। यह मिस्र में गुलामी से इज़राइल के छुटकारे की याद दिलाता था और आने वाले मसीहा की बलिदानी मृत्यु के माध्यम से पाप की गुलामी से उनके छुटकारे की ओर भी इशारा करता था। जब यहूना बपतिस्मा देने हारा ने यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा तो यर्दन नदी के किनारे मौजूद लोगों ने क्या समझा? कितने लोग इसे असली में समझ पाए? यीशु के मन में क्या विचार आए होंगे जब उसने ये शब्द सुने होंगे? यीशु जानता था कि उन सभी भविष्यवाणियों का अर्थ गतसमनी है, कलवरी है, उसे खोई हुई मानवता के लिए पाप बलि होना पड़ेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसी के लिए आए थे, वह तैयार थे। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि जब बेचारा पापी वापस लौटना चाहता है, अपने पापों को त्यागना चाहता है, तो प्रभु उसे पश्चाताप में अपने चरणों में आने से सख्ती से रोकता है? ऐसे विचारों से दूर रहिए। परमेश्वर हमें नहीं रोकता है जब हम पश्चाताप करके उसके पास आते हैं। हमें परमेश्वर को केवल एक न्यायाधीश के रूप में नहीं सोचना चाहिए जो हमारे खिलाफ सजा सुनाने के लिए तैयार है। वह पाप से घृणा करता है, लेकिन पापियों के प्रति प्रेम से उसने खुद को मसीह के रूप में दे दिया ताकि सभी जो चाहे बचाए जा सके और महिमा के राज्य में अनंत आशीर्वाद प्राप्त कर सके। परमेश्वर ने खुद को मूसा के सामने कैसे प्रकट किया, इसे हम पाते हैं निर्गमन 34 का 6 और 7 में। चलिए हम इसे पढ़ें। लिखा है, और यहोवा उसके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। प्यारो, ईश्वर का न्याय मांग करता है कि अपराधी को अपराध की सजा भुगतनी पड़े। मृत्यु वह सजा है, इसलिए यदि न्याय ही प्रबल होता तो हम सभी मर जाते, क्योंकि हम सभी ने पाप किया है। हालांकि ईश्वर दयालु है, उसकी दया से दंडित पापी के लिए जीवित रहना संभव हो जाता है। ईश्वर ने यीशु में उन सभी के लिए दंड चुकाया जो अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और यीशु को अपने प्रतिस्थापन के रूप में स्वीकार करते हैं। परमेश्वर की दया महान है, लेकिन उसका न्याय वास्तविक है। यदि हम अपने उद्धार के लिए किए गए प्रावधानों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो हमें पूर्ण न्याय का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम बाइबल में अच्छी बात यह पढ़ते हैं जो रोमियो 5:8 में दिया गया है। यह परमेश्वर की दया की सत्य को दर्शाता है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सबसे गहन चिंतन के लिए विषय यह है, ईश्वर का उस संसार के प्रति अतुलनीय प्रेम जिसने ईश्वर से प्रेम नहीं किया। यह विचार में आत्मा को वश में करने की शक्ति है और यह मन को ईश्वर की इच्छा के अधीन कर देता है। परमेश्वर उनसे प्रेम किया जो उसे प्रेम नहीं करते थे। बाइबल में हम फिलिपी 2:5-8 में दोहरे बलिदान के द्वारा परमेश्वर के हमारे परमेश्वर के हमारे प्रति प्रेम को हम पाते हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु और क्रूस की मृत्यु भी सहली। परमेश्वर ने एक बार अब्राहम को अपने बेटे को बलिदान करने के लिए मांगा था और यह परीक्षा था। अब्राहम ने अपना बेटा को परमेश्वर को सौंप दिया। परमेश्वर ने उससे दिखाया कि वह अपना बेटा को दुनिया के उद्धार के लिए कुर्बान करेगा। पुत्र के लिए यह एक स्वैच्छिक बलिदान था। यीशु पिता के पास ही रह सकते थे, वे स्वर्ग की महिमा और स्वर्गदूतों की श्रद्धा को बनाए रख सकते थे, लेकिन उन्होंने पिता के हाथों में राजदंड वापस देने और ब्रह्मांड के सिंहासन से नीचे उतरने का फैसला किया, ताकि वे अंधकार में पड़े लोगों को प्रकाश और नाश होने वालों को जीवन दे सके, ताकि वे आपको और मुझे जो अंधकार में थे, पापी जगत में थे, उन्हें अपने प्रेम से बचा सके और हमें धर्मी बना सके। मसीह द्वारा किए गए बलिदान की तुलना एक निर्दोष मेमने से की जाती है जिसे वेदी पर रखा जाता है। जब तक मसीह क्रूस पर खुद को बलिदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं आए, बलिदान की व्यवस्था पश्चाताप करने वाले पापियों के सामने हमेशा रखी गई थी कि उनके उद्धार की उच्च कीमत चुकानी होगी। यह कितनी बड़ी कीमत थी! परमेश्वर का जीवन का कीमत था। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे दुखों को सहा और हमारे पापों को उठा लिया। यशायाह नबी लिखते हैं, यशायाह 53 अध्याय का 5 और 6 में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मसीह के बलिदान के परिणामों को हम पाते हैं 1 पत्रस 2:24 में कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन पाए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्यारों, हम यीशु मसीह के क्रूस में बलिदान होने से धार्मिकता के साथ जीवन पा सकते हैं। यह कितनी अच्छी खबर है! परमेश्वर को हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए। मसीह ने उस पीड़ा को महसूस किया जो पापी को तब महसूस होगी जब दया अब दोषी जाति के लिए दलील नहीं देगी। यह पाप की भावना थी जो मनुष्य के विकल्प के रूप में पिता के क्रोध को उस पर लाती थी, जिसने उस प्याले को इतना कड़वा बना दिया जिसे उसने पिया था, और परमेश्वर के पुत्र का दिल तोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा बलिदान किए। परमेश्वर के दया से हम धर्मी ठहराए जा सकते हैं। प्यारो, आइए हम देखते हैं Romans 3:8-5 इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें। प्यारो, परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम उसके पास आए, उसका योजना में विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान उसके जीवन में विश्वास करें और उद्धार पाए। यह परमेश्वर चाहता है कि हम चुने और स्वीकार करें। इस तरह हम धर्मी ठहराए जाते हैं और उसके साथ मेल मिलाप में आते हैं। पापी परमेश्वर के साथ शांति में नहीं बल्कि शत्रुता में है। पाप परमेश्वर के विरुद्ध लड़ता है, उसके नियम और उसकी इच्छा के अनुरूप होने के विरुद्ध विद्रोह करता है। पाप के लिए मृत्यु दंड है। हालांकि मसीह हमें उस मृत्यु दंड से बचाने और परमेश्वर के साथ शांति स्थापित करने के लिए संसार में आया। वह शत्रुता के लिए प्रेम, निंदा के लिए क्षमा, अलगाव के लिए मेल मिलाप प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। यह सब औचित्य का अर्थ है। परमेश्वर हमें इसलिए स्वीकार नहीं करता कि हमने परमेश्वर के लिए क्या किया है, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर ने मसीह में हमारे लिए क्या किया है। औचित्य उस क्षण पूरा होता है जब हम मसीह में विश्वास के द्वारा उद्धार स्वीकार करते हैं। यह स्वर्ग के न्यायालय के समक्ष हमारी स्थिति को बदल देता है। हमारे पापों को क्षमा कर दिया जाता है। हमें स्वर्गीय परिवार के सदस्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है। परमेश्वर के साथ शांतिपूर्ण और खुशहाल रिश्ते में हम आ जाते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। कहता यूहन्ना 3:17, हम उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंटमेंट धर्मी ठहराए जाते हैं। इससे भी बढ़कर मसीह हृदय को बदलता है। वह विश्वास के द्वारा आपके हृदय में वास करता है। आपको विश्वास और अपनी इच्छा को निरंतर उसके प्रति समर्पित करके मसीह के साथ इस संबंध को बनाए रखना है। पाप का प्रभाव हमारे अंदर परमेश्वर की छवि को नष्ट करना है। सुसमाचार का प्रभाव हमें परमेश्वर की छवि में पुनर्स्थापित करना है। मसीह के संसार में आने का उद्देश्य परमेश्वर के चरित्र को हम पर प्रकट करना, हमारे पापों के लिए मरना और अपने अनुग्रह से यह संभव बनाना था कि उसका चरित्र हमें पुनः प्रकट हो। यदि हमें पवित्र परमेश्वर के साथ पवित्र स्वर्ग में अनंत काल तक रहना है तो हमें उसकी पवित्रता के उपहार को स्वीकार करना है और प्रकट करना होगा। इब्रानियों 12:14 के अनुसार पाप से पवित्रता में परिवर्तन हमारे उद्धारकर्ता की धार्मिकता से प्रभावित होता है। यह परमेश्वर का पवित्र नियम है जो बचाए गए लोगों के हृदय पर लिखा जाता है। केवल एक दिन हमारा है प्यारों, और इस दिन के दौरान हमें परमेश्वर के लिए जीना है, मसीह की धार्मिकता में विश्वास करके अपने चरित्र को सुंदर बनाना है। इस एक दिन हमें मसीह के हाथों में गंभीर सेवा में सौंपना है, अपने सभी उद्देश्यों और योजनाओं में उनके द्वारा निर्देशित होना है। इस एक दिन हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ करें। यह समर्पण प्रार्थना आपके दिल की इच्छा हो। आइए हम इस प्रार्थना अपने मन से करें। यह हमारी इच्छा हो, यह परमेश्वर के मेमने, आपने दुनिया के पापों को दूर करने के लिए स्वतंत्र रूप से चुना। मैं अपने सभी पापों के लिए पूर्ण प्रायश्चित के रूप में आपके पूर्ण बलिदान को स्वीकार करता हूँ। मैं आज्ञा पालन करने की शक्ति के लिए आपकी स्थायी उपस्थिति की याचना करता हूँ। आप मेरी ताकत हैं, मेरे शाश्वत सहायक हैं। हमारे पिता ने आपको मेरी धार्मिकता और बुद्धि, मेरी पवित्रता और मुक्ति बनाया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता तेरे प्रेम के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरा इस वचन के लिए, तेरे संवाद के लिए। तू हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया। तू हमसे अति प्यार करता है। तू चाहता है कि हम मन फिरा और तेरे पास आए और बचाए जाए। पिता परमेश्वर मैं मदद कर और तेरा पवित्र आत्मा दे मेरे हर एक श्रोताओं को के संग और मैं आशीष दे सबों को तेरा राजकीय प्यार कर यीशु के नाम से सुना ग्रहण करें। आमीन।
Oh,
जमाना है मसीह से वो बेगाना, तेरी दुनिया है मसीह है वही तेरा खजाना। जब भी मिला मौका किया तूने बहाना, जब भी
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।